ہوتے ہوئے بھی اور 100% اتفاق ہوتے ہوئے بھی بنیادی اختلافات موجود ہیں. یہ حیرت انگیز تضاد ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آ سکتا، لیکن جب میں اس کی تفصیل بیان کروں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ بالکل یہی صورت ہے. یعنی بنیادوں پر 100% اتفاق ہے، اس کے باوجود آپس میں بنیادی اختلافات انہی امور پر موجود ہیں جن میں بنیادی اتفاق ہے. مثلا غیرت جماعت علماء جو یہ اعلان کرتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے اور قرآن سے ثابت ہے، اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی جا سکتی، یعنی باطل کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ حق کو تبلیغ کرے، اس میں ہمارا اور ان کا کوئی بھی بنیادوں میں اختلاف نہیں، کیونکہ یہ امر واقعہ ہے کہ قرآن سے یہ ثابت ہے. 100% قطعی طور پر ثابت ہے کہ جب سے مذہب کی تاریخ معلوم ہے ہمیشہ سے یہی دستور چلا آیا ہے کہ مرتد کی سزا قتل قرار دی گئی اور تبلیغ کی اجازت نہیں دی گئی ان کی طرف سے جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے اور دوسرے کو باطل پر سمجھتے تھے. تو جماعت احمدیہ اس حقیقت کا کیسے انکار کر سکتی ہے جو قرآن سے ثابت ہو اور مذہب کی تاریخ 100% اتفاق کے ساتھ اس کے حق میں گواہی دیتی ہے. جن آیات کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے متفرق صورتوں میں سے, ان میں اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے. مثلا حضرت نوح کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے کہا قد جادلتنا فاکثرت جدالا, اے نوح تو نے بہت تبلیغ کیا کر لی ہمیں, بہت جھگڑا کیا ہم سے, حد ہی کر دی ہے تو نے تبلیغ کی, لیکن اب مزید اجازت نہیں دی جا سکتی. اب تو یہی ہوگا کہ جس چیز کا تو دعویٰ کرتا ہے کہ تمہیں بطور سزا ملے گی, اب اپنے رب کو پکارو اور سزا کی دعائیں کرو, اس سے زیادہ ہم مزید تمہیں تبلیغ کی اجازت نہیں دے سکتے. تو جب قرآن کریم بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے تھے, انہوں نے ان لوگوں کو جن کو وہ باطل پر سمجھتے تھے تبلیغ کی اجازت نہیں دی, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم میں یہ موجود نہیں, یہ تو بنیادی حقیقت ہے. پھر یہ کہنا کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ مرتد کی سزا قتل ہے, یعنی بعض لوگوں کے نزدیک, اور مذہب کی تاریخ اس کو ثابت کرتی ہے. چنانچہ اگلی آیت میں جو میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حضرت نوح کو مخاطب کر کے ان کی قوم نے کہا کہ اب تو تیرا علاج سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ تجھے سنسار کر دیا جائے, کیونکہ تبلیغ سے تو باز نہیں آ رہا اور مرتد کرتا چلا جا رہا ہے, باتوں سے نہیں مانا, اس لیے اب ہمیں مقابل پر عمل کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق کھلی چھٹی دے دے فتنے کی اور باطل کھل کھیلے اور جو چاہے کرتا چلا جائے حق کے ساتھ, یہ تو اجازت نہیں دی جا سکتی. اس لیے چونکہ ہم تمہیں باطل پر سمجھتے ہیں اور چونکہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں, اس لیے ہمارا حق ہے کہ ہم تمہیں زبردستی روکیں, تمہیں فتنہ پھیلانے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں ہے, بات نہیں آ رہا ہے, سمجھایا تمہیں کئی دفعہ کئی طریقے سے کہ بس کرو کافی ہو گئی, لیکن رک نہیں رہے. تو اس فتنے کا تو پھر یہی علاج ہے کہ تمہیں سنسار کر دیا جائے. حضرت شعیب کی قوم نے بھی ان سے یہی سلوک کیا. چنانچہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کہا لنخرجنک کا یا شعیب والذین آمنوا معک, اے شعیب تمہارا ہم نے یہ علاج سوچا ہے کہ تمہیں سنسار تو نہیں کریں گے لیکن تمہیں اپنے گھروں سے بے وطن کر دیں گے, تمہارے تمام شہری حقوق چھین لیں گے, اولا تعودون فی ملتنا, یا تمہیں واپس ہماری ملت میں لوٹ کر آنا ہوگا, یعنی ارتداد کی ایک یہ بھی سزا سوچیں گے. وہ کہتے رہ گئے اولو کنہ کا رہی, کہ اگر دل نہیں مانے گا تو کیسے تمہاری ملت میں لوٹ آئیں گے, لیکن کسی نے ایک نہیں سنی. یہی مضمون قرآن کریم آگے بڑھاتا چلا جاتا ہے اور متفرق صورتوں میں قصص انبیاء کے طور پر جو واقعات بیان فرماتا ہے اس میں یہی مضمون مختلف رنگ میں, مختلف شکلوں میں, مختلف مواقع کے اوپر قرآن کریم کھولتا چلا جا رہا ہے. فرماتا ہے اس کے بعد ابراہیم کی باری آئی اور ابراہیم سے بھی یہی کہا, خود اس کے چچا آزر نے جسے باپ کا بھی مقام حاصل تھا اس لیے بطور باپ کے پتر بیان کیا گیا ہے, اس نے یہی کہا کہ تو باز آ جا ورنہ تجھے سنسار کر دیا جائے گا. اور پھر یہ بھی کہا ان کی قوم نے کہ تمہارا تو اس کے سوا علاج نہیں کہ جلتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے, کیونکہ ارتداد کو کوئی قوم دنیا میں برداشت نہیں کر سکتی. کیسے ہو سکتا ہے کہ ملت میں فتنہ برپا کیا جا رہا ہو اور بنیادی امور میں اختلاف ہو, اور پھر جس قوم کو اکثریت حاصل ہے, جس کو طاقت حاصل ہے, وہ آنکھیں بند کر کے اجازت دے دے کہ جو چاہے جتنا چاہے کتنا پھیلاتا چلا جائے, کوئی حد ہونی چاہیے. تمہارا علاج اس کے سوا پھر قرآن حضرت شعیب کے علاوہ صالح کا بھی ذکر فرماتا ہے, ہود کا بھی ذکر فرماتا ہے, حضرت لوط کا بھی ذکر فرماتا ہے, اور हर तरह फेर फेर कर से आयात के जरिए इस बात को साबित करता चला जाता है कि मजहब की मारूफ तारीख से लेकर हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक हमेशा इंसान ने यह हक अपने लिए अख्तियार किया, इसे अपनाया और इस पर अमल किया। चुनाचे हजरत लूत को मुखातिब करते हुए उनकी कौम ने जो कहा उसको उसका जिक्र करते हुए खुदा तआला फरमाता है वह मा खाना जवाब कौम ही इल्ला अन कालू अखरजूहुम मिन क़रियतिकुम इन्नहुम उनाफ़ुन यतताहरून। बड़े पाकबाज बने फिरते हैं ये लोग लूत और लूत के मानने वाले, इनका तो एक ही इलाज है कि अगर ये इतने पाकबाज बनते हैं तो अपने शहरों से इनको निकाल दो और बेवतन कर दो। तो कोई एक भी नबी ऐसा नहीं है जिसके जमाने में ये दोनों वाकयात दोहराए ना गए। बहुत सी आयात में खुदा तआला खोल कर बयान फरमाता है कि ये दावा किया गया कि तुम बातिल पर हो, हम हक पर हैं, हमारे आबाओ अजदाद का मजहब चला आ रहा है, तुमने बदअमनी फैला दी है, तुमने फितना और फसाद बर्पा कर दिया है, एक को दूसरे से अलग कर रहे हो। हर किस्म के बज़ाहिर जायज उज़र तराशे गए, लेकिन बुनियादी दावा यही था कि वो इंसान जिसे अक्सरियत हासिल हो उसे ये लाजमी हक है कि अकलियत को अगर वो झूठ पर समझे तो उसे तबलीग की इजाजत ना दे, और इख्तलाफ मजहब के नतीजे में ना सिर्फ जबर का हक है बल्कि अगर कोई हमारी कौम में से निकलकर दूसरे अकीदे में दाखिल हो जाए तो उसे खत्म करने का भी हक है। आम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी बयान ही हुआ और कुरान करीम खोल कर इस मजमून को बयान फरमा रहा है और तारीख इस्लाम इस पर खूब तफसील से रोशनी डाल रही है कि यही दो बातें आपके वक्त में भी बयान की गई कि तुम हमारी मिल्लत से फिर रहे हो इसलिए तुम्हारा इलाज मौत है और हर किस्म की सजाएं देना हमारा हक है क्योंकि हम अपने आप को हक पर समझते हैं, तुम्हें बातिल पर समझते हैं, और तबलीग की इजाजत नहीं दी जा सकती। किसी कीमत पर यह नहीं होगा कि बातिल जो चाहे फसाद फैलाता फिरे, फितने खड़ा करे और हक चुप करके सुनता रहे और तबलीग की इजाजत दे, ये कैसे मुमकिन। चुनाचे आम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी शदीद तकलीफों और मसाइब के बावजूद जब तबलीग से रुके नहीं तो वो मशहूर वाक़या जो आमतौर पर मुसलमान बच्चों को भी इल्म है वो पेश आया कि अबू तालिब के पास उनकी कौम गई और बड़ा वावेला किया और कहा कि देखो तुम्हारी पनाह हासिल है तुम्हारे भतीजे को, लेकिन चूंकि अब फितना और फसाद की हद हो गई है और हमारे मबूदों को वो गालियां देता है, उन्हें झूठा करार देता है, जिनकी हम इज्जत करते हैं उनको बेइज्जत करता है और हमारी कौम में इफ्तराक पैदा कर रहा है, इसलिए अब मजीद इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, सिर्फ इस हाल में वो यहां रह सकता है अब कि खामोश रहे और तबलीग ना करें। चुनाचे वो हजरत अबू तालिब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा मेरे भतीजे मेरे बेटे इस तरह कौम मुझसे कह रही है, और सिर्फ यही नहीं कह रही बल्कि वो इस पेशकश के साथ कुछ मुराद भी तुम्हें देना चाहती और पैगाम ये है कि अगर तुम ये चाहते हो कि अरब का बादशाह बन जाओ, तबलीग का मकसद यही होगा कि सारी कौम तुम्हारे पीछे लग जाए, तुम्हें अक्सरियत हासिल हो जाए और हुकूमत के भूखे हो, तुम्हें हुकूमत अता हो जाए, तो तबलीग छोड़ दो हुकूमत हम तुम्हें देते हैं। ये कौन सी बात है, हुकूमत से हमें कोई इख्तलाफ नहीं, हुकूमत हम देने के लिए तैयार हैं। वो कौम मौजूदा जमाने की कौमों से इस लिहाज से जरूर मुख्तलिफ थी। आजकल कहते हैं हुकूमत नहीं देनी और जो मर्जी कर लो, लेकिन उन कौमों में इतनी अकल थी कि उसूलों की हिफाजत करते थे। वो कहते थे हमें उसूली इख्तलाफ है, हुकूमत की लालच नहीं, इसलिए हुकूमत बेशक ले लो लेकिन उसूल नहीं हम तोड़ने देंगे। महाराज बहुत बेहतर नमूना था इस लिहाज से। चुनाचे हजरत अबू तालिब ने पैगाम जारी रखा और फरमाया कि देखो वो ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हें दुनिया की हसीन तरीन औरत चाहिए हो, क्योंकि इंसानी जिंदगी के की जो दौड़ है, जो जद्दोजहद है, उसमें हुकूमत भी है और औरत की तमन्ना भी होती है, और बे इंतहा फसाद जो सोसाइटियों में फैला हुआ है उसमें यही चाहत पीछे से काम कर रही है। चुनाचे कैसा अच्छा नफ्सियाती तजिया किया उन्होंने, उन्होंने कहा तुम उंगली रखो और अरब की हसीन तरीन दोशीजा हम तुम्हारी खिदमत में हाजिर कर देंगे, लेकिन तबलीग से बात आ जाओ। फिर उन्होंने कहा कि एक तीसरी चीज जिसने सारी दुनिया में फसाद बर्पा कर रखा है वो दौलत है, तो हो सकता है इनकी ख्वाहिश ये हो कि अरबों में तबलीग करके जब हुकूमत बना लूंगा तो सारे अरब की दौलत से मेट लूंगा, दुकानदारी बनानी। चुनाचे उन्होंने कहा कि अगर दौलत की बहस है तो फिर फसाद छोड़ो, दौलत हम देने के लिए हाजिर, सारे अरब की दौलत तुम्हारे कदमों में निछावर कर रहे, लेकिन तुम खामोश रहो। आमना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से और बड़े दर्द से इस बात को सुनते रहे और फिर फरमाया कि ऐ मेरे चचा, मालूम होता है आप मुझे पनाह देते देते थक गए और अब चाहते हैं कि अपनी पनाह को उठा लें, लेकिन हकीकत यह है कि मुझे तो आपकी पनाह की जरूरत नहीं, मुझे तो मेरे खुदा की पनाह की जरूरत है, और इस बात की कोई परवाह नहीं कि आप अपनी पनाह हटाते हैं, और कोई शिकवा नहीं, आप अपनी पनाह को दूर कर लीजिए, मगर जहां तक उनके पैगाम का ताल्लुक है, खुदा की कसम अगर ये सूरज को मेरे दाएं हाथ पर भी लाकर रख दें और चांद को मेरे बाएं हाथ पर ला के भी रख दें तब भी मैं तब्दील इस्लाम से बाज नहीं हूं। ये जवाब था हजरत अब्दुल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस दौर तक जो सैयदुल अंबिया का दौर है उस वक्त तक तो ये दस्तूर नहीं बदला था। हम ये कहते हैं कि तुम्हें भी इत्तेफाक है, ये तारीख मुत्तफा पहला है, कुरान की बयान करता है और सुन्नत ने इसकी हिफाजत फरमाई। इख्तलाफ सिर्फ इतना है कि अब यह बताओ कि यह दस्तूर उल्टा किस वक्त है, कब ये फैसले हुए थे, किस किताब में इसका जिक्र मिलता है कि खुदा ताला ने अचानक इस सारे मजमून को उल्टा दिया हो, जिन लोगों पर लानतें डालता आया और सारी तारीख में उन लोगों का जिक्र करके उन पर लानतें डाली हूं कि कैसे जालिम लोग थे, कि इस वजह से कि अपने आप को हक पर समझते थे और किसी को बातिल पर समझते थे, इंसानी बुनियादी हकूक पर तबर रख दिया और बहमी तबादल है ख्यालात की रो को रोक दिया, जिसके बगैर ना इंसानी हक तरक्की कर सकती है, ना मुआशरा तरक्की कर सकता है, ना सदाकत बन सकती है, और सजाएं तजवीज की इख्तलाफ अकीदा के नतीजे में तबादला ख्यालात, और वहां दखल दिया जहां इंसान दखल दे नहीं सकता, यानी दिल के ऊपर हमला किया और कहा कि इस दिल को बदलो वरना हम तुम्हें कर दें, क्योंकि ईमान और यकीन का ताल्लुक तो दिल से है, यानी जिसे आम दुनिया की उर्फ आम में दिमाग भी कहा जाता है लेकिन पुरानी मुहावरे में उसे दिल कहते हैं। तो कहते हैं दिल तब्दील करो वरना हम तुम्हें कत्ल करेंगे। ये जंग चली आ रही है जब से मजहब की तारीख हमें मालूम है, जिसकी कुरान ने हिफाजत की और इसे बार बार दोहराया, और हर तो मरतबा कुरान की ने यह नतीजा निकाला कि वो लोग हलाक हो गए, मा बकत अलैहिम समावात वल अर्ज, उनके ऊपर आसमान ने फिर आंसू नहीं बहाए, इस तरह उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया कि उनके निशान मिट गए। इन दो जराइम के नतीजे में कि वो तबलीग से रोकते थे और कत्ल मुर्तद का अकीदा रखते थे और कहते ये थे बात को सजाकर और बनाकर कि हमारे आबाओ अजदाद का मजहब है, हम हक पर हैं, तुम बातिल पर हो, हम तुम्हें झूठा समझते हैं, खुलम खुला मुफ्तरी समझते हैं, इसलिए हमें यह हक, اختلاف ہمارا اور غیر احمدیوں کا صرف اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں یہاں تک تو درست ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ دستور بدلا کب ہے کہ حق نے وہ ساری باتیں اختیار کر لی ہوں جس پر لانتیں ڈالتا آیا اور باطل کے ذمے وہ ساری خوشنودیاں لگا دی ہوں، وہ اچھے دستور لگا دیے ہوں جس کی قرآن کریم تعریف کرتا چلا آیا کہ بڑے صبر اور حوصلے سے انہوں نے ان باتوں کو برداشت کیا. وہی بات ہے کہ پر تیرے عہد سے آگے تو یہ دستور نہ تھا، اور پرانی قومیں قیامت کے دن خدا کو مخاطب کر کے کیا یہ نہیں کہیں گی کہ اے خدا تیرے قرآن میں جو سب سے اعلیٰ کتاب بیان کی گئی، سب سے کامل کتاب جسے کہا گیا، اس نے تاریخ میں ہمارا ذکر کیا اور ان دو عقیدوں کی بنا پر ہم پہ لامتے ڈالی، اور پھر کیا واقعہ ہو گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک سید بلد آدم کے مذہب کو تو نے خود ویسا ہی بنا دیا جس پر تو لامتے ڈالتا چلا رہا. اس سے بڑا ظالمانہ الزام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک مذہب پر نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے دلاداری ہماری ہوتی ہے نہ کہ ان کی. تبلیغ سے دلاداری کی کوئی سند قرآن کریم میں موجود نہیں، لیکن یہ ظالمانہ فعل کہ سید بلد آدم جس کا مذہب سب سے زیادہ پاک سب سے زیادہ حسین جو رحمت للعالمین ہو اور اس کا مذہب بھی تمام رحمت ہی رحمت ہو، اس پر یہ الزام کہ اس نے از خود سارے زمانے کے دستور کو بدل کر مکروہ چیزیں نعوذ باللہ اپنے پلے میں رکھ لی اور جو حسین چیزیں تھیں وہ دشمن کے ہاتھ میں پکڑ لی، اتنا جاہلانہ تصور ناممکن ہے کہ عام صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہو اور پھر کیوں اختیار کر. جہالت کی بھی تو کوئی حد ہونی چاہیے، لیکن یہ بھی نہیں سوچتے کہ قرآن کریم ان معنوں میں بھی کامل کتاب ہے کہ جو وہ تعلیم دیتی ہے اس کے برعکس پر عمل ممکن ہی نہیں، یعنی اختیار کی بات نہیں رہتی انسان کے لیے. رشد اس کو کہتے ہیں کہ ایسی تعلیم جس کا انکار کرنے کی تو تمہیں اجازت ہوگی، لیکن جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو بے بس پاؤ گے اپنے آپ، بے اختیار ہو جاؤ اور کوئی چارہ نہیں چلے رہے گا. چنانچہ دیکھیے قتل مرتد کے عقیدے کے نتیجے میں کیا نتیجہ پیدا ہوتا ہے. بالکل برعکس نتیجہ ان مقاصد کے برعکس پیدا ہوتا ہے جن مقاصد کے نام پر قتل مرتد کا عقیدہ جاری کیا گیا. یعنی اس لیے کہا گیا قتل مرتد جائز ہے کہ حق کی حفاظت کی جائے اور جھوٹ کو اور باطل کو اپنی سوسائٹی سے باہر نکال کے پھینک دیا جائے. یہ دعویٰ ہے. اگر یہ دعویٰ سچا ہے تو قتل مرتد کے عقیدے پر عمل کر کے دیکھیں کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. ظاہر بات ہے بالکل معمولی سی عقل بھی رکھتا ہو انسان تو اسے بات سمجھ آ جائے گی کہ جس سوسائٹی میں قتل مرتد کا عقیدہ رائج کر دیا جائے وہاں جو لوگ صادق القول ہیں اور جو اپنے ظاہر و باطن میں ایک ہیں ان میں کوئی نفاق نہیں اور وہ سچائی کی خاطر ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، ایسے وہ لوگ جو انسانیت کا خلاصہ ہیں یہ سارے قتل کر دیے جائیں، کیونکہ ایک بھی ان میں سے پیچھے نہیں ہٹے گا. وہ کہے گا کہ سچ کے نام پر میں سچ کا انکار کیسے کر سکتا ہوں، کیونکہ میرا دل کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے، اس لیے تم بے شک اسے باطل سمجھو. میں جب تک درست سمجھتا رہوں گا اس وقت تک میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں اسے جھوٹ کہہ دوں. یہی وہ جواب تھا حضرت شعیب کا اولوکن نہ کہا رہی کہ احمق ہو، دعویٰ وہ کر بیٹھے جس پر عمل کروا ہی نہیں سکتے. ہمارے دل ہی نہیں مان رہے تو کیسے تلوار سے دل منوا لو گے. بس تمام وہ لوگ جو سچے ہیں اپنے قول اور فعل میں اور ان کے کردار میں کوئی تضاد نہیں، وہ اصول کے رسیاں ہیں اور اصولوں پر قائم رہنا جانتے ہیں، ایسی سوسائٹی میں ان کا قتل عام ہو جائے گا، وہ ایک بھی نہیں بچے گا. اور وہ جو جھوٹے ہیں بد کردار ہیں جو منافق بننا پسند کرتے ہیں اپنے لیے اور اصولوں کی کوئی قیمت نہیں वो सारे के सारे कत्ले मुर्तद के नतीजे में उस सोसाइटी में लौट जाएंगे जिसकी तरफ उनको बुलाया जा रहा है। ऐलान यह हो रहा था कि हक की हिफाजत की खातिर बातिल को मिटाने के लिए हमने ये फैल किया। नतीजा यह निकला कि हक को मिटा दिया और बातिल को भी सीने से लगा दिया और मुनाफ़त की परवरिश की। कुरान करीम ने अंबिया के आने की गरज यह बयान फरमाई, लयमीज़ अल-ख़बीसा मिन अत-तय्यिब, कि अल्लाह ताला खबीस चीज को तय्यब से अलग कर दे। और इस अकीदे ने, कत्ले मुर्तद के अकीदे ने नतीजा क्या पैदा किया कि खबीस को अलग नहीं होने देना, अगर वो भी किया था कमबख्त कहीं तो वापस ले आओ और अच्छी तरह तय्यब में मिला जुला दो, ताकि कुछ समझ ना आए कि दाना साफ कौन सा है और गंदा कौन सा है। ये नहीं सोचा कि एक कतरा पेशाब का बकरी का अगर दूध में मिल जाए या एक नहीं मिल जाए तो सारा दूध गंदा हो जाए। जितनी मेहनत की थी अंबिया ने, इतनी कुर्बानियां दी थी, और सबसे बढ़कर हजरत अब्दस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेहनत फरमाई और कुर्बानियां दी, उस सारी मेहनत को इस एक अकीदे के जरिए जाया कर दिया, बल्कि बिल्कुल बरक्स नतीजा पैदा कर दिया। वो कमाई मेहनत की जिसके नतीजे में खबीस अलग हो रहे थे और पाकिजा अलग हो रहे थे, और उसके लिए एक बाकायदा दस्तूर अमल जारी किया गया था, और वो दस्तूर अमल यह था कि पाकिजा के लिए जरूरी करार दे दिया कि सख्ती की छाननियों में से गुजरो, तकलीफों और मुसीबतों में से निकल के दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम पाकिजा। और जो खबीस थे उनके लिए यह दस्तूर अमल मुकर्रर फरमाया कि तुम्हारे तुम पर कोई हर्ज नहीं, तुम जिंदगी की ऐश करो, जो चाहो लज्जतें हासिल करो, और तुम्हें कुर्बानी पेश करने की जरूरत नहीं। हां, अगर फसाद बर्पा करना हो तो पैसे लेकर किसी से बेशक करो, खुली छुट्टी। लेकिन जिनसे हम, जिनको हम तय्यब बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह दस्तूर है कि वो कुर्बानियां भी दें और फिर पैसे भी साफ खुदा की राह में खर्च करें। गरीब होते हुए भी अपने आप को लुटाएं अल्लाह की राह में। यह दस्तूरुल अमल था जो हमेशा से चला आ रहा है, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक जारी रहा और अब फिर जारी है उनकी नजर में, जिनको देख, जिनकी नजर अंधी नहीं हो गई, उनको तो नजर आ रहा है। तो इस सारी मेहनत को जो तारीख की गहराइयों में पैवस्त चली आ रही है, उसको आनन फानन बातिल करके बिल्कुल बरक्स नतीजा पैदा कर दिया कि नहीं, बातिल को हक से अलग नहीं होने दिया जाए। मारकर, जूतियां मारकर, तकलीफें देकर, कत्ल करके, जिंदा जलाकर, घरों से निकालकर, सब हथियार इस्तेमाल करके वापस ले आया जाएगा अपनी मिल्लत में और कहा जाएगा तुम यही सचते थे, यही आ गए, और जो सच्चे हैं उनको कत्ल वारत करके खत्म कर दिया जाए। यह है वो दस्तूर जिसके ऊपर बड़े बड़े वक्त के उलमा इतनी लंबी लंबी तकरीरें कर रहे हैं, हैरत होती है इनको देखकर, उनकी शक्लें देखकर, ये कह के रहे हैं इसकी तरफ मंसूब हो रहे हैं। जहां तक तबलीग का ताल्लुक है, उसमें भी क्योंकि कुरान की तालीम के खिलाफ बात है इसलिए नहीं चल सकती। मैंने एक दफा बड़ी तफसील से गौर करके देखा तो हैरान रह गया कि कुरानी तालीम का ये इम्तियाज है कि जी दुनिया की हर दूसरी तालीम, इस तालीम को छोड़कर अगर तुम अमल करने की कोशिश करोगे तो नाकाम हो जाओगे, अमल कर ही नहीं सकते, और अमल करोगे अगर जबरदस्ती तो नतीजा उलट निकलेगा। इसको कहते हैं हक का खुलम खुला बयानात के तौर पर वाजे हो जाना, यानी कसौटी है कि आप इस्तेमाल करके देख लें, इस्लामी तालीम को छोड़कर बरक्स इख्तियार करें, नतीजा उलट जाएगा था। बस यकीन हो गया कि यह तालीम अपनी तमाम तफासिल में सच्ची है। तबलीग के मुतालिक देखिए कि वहां भी एक सूरत हाल नजर आएगी। कहते हैं बातिल को इजाजत नहीं दी जा सकती कि हक को तबलीग करे, क्या इसके नतीजे में इसका बरक्स भी दुरुस्त है कि हक को इजाजत नहीं दी जा सकती कि बातिल को तबलीग करे? कहते हैं नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हक को, हक का हक है कि बातिल को तबलीग करे। यहां तक तो बात समझ में आ गई, आगे चलिए तबलीग कैसे करे। बातिल को जाके कहे कि तुम ये बात मान जाओ, और अगर नहीं मानोगे तो डंडे मारेंगे, और अगर नहीं माननी तो ना मानो लेकिन आगे से जवाब देने का हक तुम्हें कोई नहीं। तुम्हें समझ आए या ना आए तुम खामोशी से सुनते हो। यह तबलीगी दस्तूर कहां से लिया गया? ये तो सारी पुरानी तारीख इस दस्तूर को जुड़ा रही है, वैसे हुआ करती थी, बल्कि बरक्स नतीजा था। पुरानी तारीख हमें यह बताती है कि अंबिया दलाइल पेश करते थे और वो डंडों पर आ जाते थे मुखालिफी, और वो कहते थे कि बस करो हम वरना आया डंडा, और अंबिया कहते रह जाते थे कि तबलीग करो हमें, हाथों बुरहाना को हाथों बुरहाना को। एक जगह नहीं, मुतद्दद जगह पुराने करीम में यह आयत मौजूद है इसी मजमून की, कि बार बार अंबिया कहते रहे कि दलील तो लाओ भाई, दलील से बात करो। वो कहते थे दलील वलील हम भी जानते हैं, काफी हो गई है, हम डंडा उठाए। तो ये तबलीग थी अंबिया की, नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, कि वो कहते थे कि मानो वरना हम उठाते हैं डंडा। और ये चल नहीं सकते, ये तो वैसी तबलीग है जैसे मलका विक्टोरिया का बुत था जो किसी जमाने में लाहौर में चेयरिंग क्रॉस का नसब होता था, उसके एक मलका विक्टोरिया की किसी और बादशाह का था, उसके एक हाथ में तलवार थी और एक हाथ में कलम था, और इंस्क्रिप्शन ये बताती थी कि बातों से मान जाओ वरना तलवार गिरे और जबरदस्ती तुम्हें ठीक करेंगे। ये इस ब्रिटिश हुकूमत का खुलासा था जो उस बुद्ध की शक्ल में बयान किया कि जुबान से मानो वरना लातों के भूत, बातों से नहीं मानते थे लातें भी आएंगी पीछे। तो ये वो अंग्रेजी कौम की तबलीग थी जो नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कुरान करीम ने अख्तियार कर ली, ये जिसे सुन्नत अंबिया फरमाया नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक, बिल्कुल नहीं। वो तबलीग जो तुम कहते हो चल ही नहीं सकती। बस अगर ये कहोगे कि हमारी बातें सुनो और जवाब में तुम्हारे जहन में कोई भी ख्याल है उसको तुम्हें बताने का हक नहीं, तो फिर तबलीग का रास्ता अमलन बंद कर दिया, यानी हक की तबलीग का रास्ता बंद कर दिया। क्योंकि जब तक शकूक में आना ना किए जाए उस वक्त तक किसी इंसान पर तबलीग कारगर नहीं हो सकती। तो कहना यह चाहते थे कि बातिल की तबलीग का रास्ता बंद कर रहे हैं, नतीजा यह निकाला कि हक की तबलीग का रास्ता बंद कर दिया अपने हाथों से, बिल्कुल बरक्स नतीजा। और अगर इजाजत दे दें उनको बोलने की तो फिर हाथ क्या आया, वो जब जवाब देंगे वही तो उनकी तबलीग है। जब वो कहेंगे कि मियां हमें यह समझ नहीं आ रही, हमें तो कह कुरान करीम यूं लगता है कि यह कह रहा है, तो क्या वो तबलीग नहीं होगी? तो किस तरह बंद करेंगे? नामुमकिन है सिवाय इसके कि खुदकुशी की जाए और तबलीग का बिल्कुल बरक्स नतीजा पैदा कर दिया जाए। उस वक्त तक ये कानून जारी नहीं हो सकता किसी मुल्क में। कितना अजीमुशान कलाम है खुदा का, कैसा हसीन और कामिल है कि बरक्स इख्तियार करने की इजाजत ही नहीं देता। जोर लगा के देख लो तुम नाकाम और नामुराद रह जाओगे, और कुरानी तालीम के बरक्स तालीम को जारी नहीं कर सकते, जारी करोगे तो बरक्स नतीजे भी साथ हासिल करोगे, अपने मकसद के नतज हासिल नहीं कर सकते। लेकिन जब कौमों की अकलें मारी जाती हैं तो फिर यही हुआ करता है। असल बात यह है कि यह भी नहीं सोचा जा रहा कि इसके दूसरे लवाजमात क्या हैं और इसके बाद में पैदा होने वाले असरात दुनिया पर क्या होंगे। अमरे वाकया यह है कि सारे आलम में इस्लाम की तबलीग बंद करने की इससे बेहतर तरकीब किसी जालिम को नहीं सोच सकते थे। क्योंकि अगर एक मुल्क में किसी कोई इंसान अपनी अक्सरियत की बिना पर यह हक मनवा ले कि चूंकि हम अक्सरियत में हैं और हम हक पर हैं, ये यकीन रखते हैं अपने आप में हम हक पर हैं, हक पर होने का इंसानी नस्बत के लिहाज से इससे ज्यादा माना किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट और गैर मशरूत फैसला सवाए खुदा के कोई नहीं कर सकता। लेकिन यह जरूर है कि बहुत से इंसान बात बातों पर पैदा होते हैं, विरसे में हासिल करते हैं और मौत तक वो कम ही यकीन इस बात का रखते हैं कि हम हक पर हैं। और हमारे मुखालिफीन बातिल पर हैं, और एक लम्हा के लिए भी उनको इस बात पर शक नहीं पड़ता। तो अगर किसी दुनिया के किसी मुल्क में कोई अक्सरियत यह फैसला करे कि चूंकि अकलन बातिल को यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि हक में फितना फैलाए और फुसला कर और कई तरीके अख्तियार करके हमारे आदमी तोड़ने शुरू कर दें और अकलियत को अक्सर अक्सरियत में बदलने लग जाए, ये मुल्क में इतना बड़ा फितना किसी नजरियाती ममलिकत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये नजरियाती ममलिकत का मुहावरा भी इश्तराकियों से ऐसा सीखा है बाद लोगों ने, अकलें गुम हो गई हैं, सोचते ही नहीं कि ये क्या मुहावरा हमने अख्तियार कर लिया। और चूंकि राय हो चुका है इसलिए बगैर सोचे समझे अच्छे तालीम याफ्ता लोग भी इसको समझ चुप करके तस्लीम कर रहे हैं। नजरियाती ममलिकत, कि किसी नजरियाती ममलिकत में उस नजरिए के खिलाफ बात तस्लीम नहीं की जा सकती, यानी उसको इजाजत नहीं दी जा सकती। कल तक तो इश्तराकियों को जालिम करार देते थे, कहते थे हद हो गई अंधेर नगरी है, कि नजरियात के ऊपर पहरे बिठा दिए, और आज ये इतना मचा हुआ मुहावरा बन गया है कि बड़े बड़े बाजार तालीम याफ्ता लोग भी इसे बकायदा दलील के तौर पर पेश करते हैं कि नजरियाती ममलिकत में इजाजत नहीं जा सकती, क्योंकि ये इसके पस मंजर में बाद बड़ी ताकतें काम कर रही हैं, मजाहिर से खेल रही हैं, इसलिए उनकी इंटेलिजेंस के बनाए हुए मुहावरे हैं सदासद, इससे ज्यादा इनकी कोई हकीकत नहीं। बहरहाल इस असूल को अगर तस्लीम कर लिया जाए तो ये तस्लीम किए बगैर ये असूल तस्लीम हो ही नहीं सकता कि इंसान को हक है कि जिस बात को हक समझे और यकीन करे अगर उसका जोर चले तो उसके बरअक्स बात सुनने से भी इनकार कर दे और सुनवाने की इजाजत भी ना दे, सुनाने की इजाजत भी ना दे और किसी को सुनने की भी इजाजत ना दे। ये बुनियादी हक जब तक इंसान का तस्लीम ना हो किसी मजहब को इसके अख्तियार करने की इजाजत दी नहीं जा सकती। तो जब आप तस्लीम कर लेंगे तो वहां तो तबलीग इस्लाम इस तरह बंद हो गई मुल्क में कि अगले को बेचारे को बोलने की इजाजत नहीं, वो बोलेगा तो मार खाएगा, ना बोलेगा तो ईमान गवाएगा, उस बेचारे के लिए तो ना जाए मांगन ना पाए रफ्तन, कोई सूरत ही नहीं रहती, सवाय इसके कि दिल ही दिल में मजहब से मुतनफर होना शुरू हो जाए और क्या ये सारा किस्सा ही बकवास है, जुल्म और खुदा के नाम पर हम कैसे मान सकते हैं। तो वहां तो नाकाम हो गया, और गैर ममालिक का जहां तक ताल्लुक है वो इस हक को इस्तेमाल करेंगे। चुनाचे हिंदुस्तान है, वहां हिंदू अक्सरियत है और वो अपने आप को हक पर समझते हैं और मुसलमानों को बिल्कुल बातिल समझते हैं, और उनकी किताब की तालीम हमारी किताब की तालीम से मुख्तलिफ है। वो बिगड़ी हुई तालीम जो उन्होंने विरसे में पाई है उसकी रूह से तो हर गैर को इंतहाई जालिमाना तकलीफें देकर खत्म करना मतैन सवाब है। ये अजीब बात है कि इसको अपना लिया गया है वहां से और इख्तियार किया जा रहा है, लेकिन मैं कुरान का मुकाबला कर रहा हूं। अगरचे आजकल बाद मुसलमान कहलाने वालों ने भी ये हिंदू तालीम अपना ली है, लेकिन कुरान में इसका जिक्र नहीं। इसलिए जब मैं कहता हूं कि कुरान के मुकाबले पर उनकी ये जालिमाना तालीम है तो बिल्कुल दुरुस्त कह रहा हूं। बहरहाल उनको हक है और अगर वो इस हक को इस्तेमाल करें तो चंद लाख चंद नफूस को तबाह बर्बाद करने के नतीजे में 14 करोड़ मुसलमानों के लिए हलाकत के समान पैदा कर दो और जाए हक दे दोगे तो रहे कौम। मैंने यही सवाल जो 1953 की तहकीकाती अदालत थी उसमें जस्टिस मुरीब में मौलाना मौदूदी साहब से किया, और बड़े जहीन आदमी थे, उनकी बात बड़ी बारीक नींद नजर थी उनकी। उन्होंने मौलाना मौदूदी साहब से सवाल किया कि मौलाना आप ये कहते हैं कि ये हक हासिल है हमें, कि चूंकि हम हक पर हैं इसलिए बातिल को नहीं पनपने देंगे और बातिल के खिलाफ डंडा इस्तेमाल करेंगे और ये अकली हक बुनियादी इंसान को हासिल है। अगर ये बात दुरुस्त है तो उन्होंने पूछा कि आपके हमसाये में हिंदुस्तान है, کیا ہندوؤں کو بھی آپ یہ حق دیں گے یا ان کو انسانیت سے ہی خارج کر دیں گے؟ تو مولانا مودودی نے فرمایا کہ ہاں ہندو کو بھی ہم حق دیں گے. انہوں نے کہا بہت اچھا, اگر ہندو کو حق دیں گے تو وہ آپ کو اچھوت بنائے گا اپنے مذہب کے مطابق اور یہ مظالم کرے گا, اور اگر گزرتے ہوئے کسی وقت آپ کے کان میں ریت کی آواز پڑ جائے تو سیسا پگھلا کر اس کان میں ڈالا جائے, اگر سایہ پڑ جائے کسی ہندو کے کھانے کی جگہ پر تو عذاب دے کر مروایا جائے گا. اور یہ تفاصیل ہے, یہ ہندو مذہب ہے, وہ اپنے آپ کو واقف سمجھتے ہیں, تو کیا آپ کے نزدیک یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا بالکل درست ہے, ہمیں کوڑی کی بھی پرواہ نہیں کہ ہندوستان کے مسلمانوں پر اتنے کیا ظلم ہوتے ہیں, ہم تو قائم رہیں گے اس بات پر. یہاں پہنچ جاتا ہے انسان جب حق کو چھوڑتا ہے. بس قرآن کریم کی تعلیم اپنے حسن کو زور سے منواتی ہے, یعنی زور دلیل سے, عقل کی قوت سے, اور بے اختیار کر کے رکھ دیتی ہے مقابل کے باطل کو, اس کا اس کی پیش ہی نہیں جانے دیتی. جب ایک غلط قدم اٹھا لیں گے تو مقابل پر غلط قدم اٹھتے اٹھتے بالکل برعکس نتائج پیدا ہوں گے, مسلمان قوم کی حفاظت کی بجائے مسلمان قوم کی ہلاکت کے سامان پیدا کر لیں گے اگر آپ قرآن کی تعلیم کے پیچھے ہٹیں گے. اور ساری دنیا میں اسلام کی تبلیغ مان, کیونکہ ریسیپروکل بیسس پہ کام چلتا ہے آج کل, پہلے بھی چلا کرتا تھا, اب بھی چلتا ہے, آئندہ بھی یہی ہوگا. جب ایک قوم میں کسی دوسرے نظریہ کے حقوق کو تلف کیا جائے تو دوسری قوم وہ انہیں حقوق کو خود استعمال کرتی ہے پھر دوسرے کے مقابلے. تو اس سے زیادہ ظالمانہ سکیم, ایسی خوفناک سازش جس دماغ میں آئی ہے یا جن دماغوں میں اس نے پرورش پائی ہے, ان کو تو بعد میں اگر وہ اجازت دیں تو ڈیسیکشن ہو کر معلوم کرنا چاہیے کہ کس نوع کے وہ دماغ تھے. ہر بات میں الٹ خودکشی کا اس سے زیادہ خوفناک طریقہ سوچا ہی نہیں جا سکتا. اور پھر قرآن کی طرف منسوخ کیا جائے, نعوذ باللہ من ذلک, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا جائے. تو جب یہاں تک دستور پہنچ جائے تو پھر واقعتا وہی بات رہتی ہے کہ اب تم چھوڑ دو اس بات کو, اب خدا سے وہ مانگو جس کا تم وعدہ میں وعدہ دیا کرتے. اس بات میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے پرانی قومیں عقل کے لحاظ سے بہتر تھیں کئی باتوں میں, بعض نتیجے وہ بالکل درست نکالتے تھے. وہ کہتے تھے جب ہم نے حد ہی کر دی ہے اب ظلم کی تم پر, تو اب اس کے سوا راستہ ہی کوئی نہیں رہا کہ تم جس خدا کی طرف منسوب ہوتے ہو, جس کے برتے پر ناچ رہے ہو اور ایسی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, پھر اس کو بلاؤ, اب تو ہمارا فیصلہ وہی کرے گا. اور قرآن ان کے اس دعوے کو تسلیم کرتا ہے اور یہی اعلان کرتا تھا کہ ہاں پھر یہی ہوگا, اب تمہارا اور ہمارا معاملہ ختم ہے, اب ہمارے خدا کا اور تمہارا معاملہ ہے, اور پھر تم سے وہی سلوک کرے گا جو اس سے پہلے اس کردار کے لوگوں سے سلوک ہوتا چلا ہے. اس لیے دعائیں بہت کریں, کثرت سے کریں. ابھی یہ مضمون آگے بڑھ رہا ہے, رک نہیں گیا. جو دلوں میں بوجھ ہیں وہ ابھی طرح پوری طرح کھل کر نہ باہر آئے ہیں نہ ان کی پیاس ہوئی ہے, کیونکہ جہنم کی یہ تاریخ قرآن کریم نے بتائی ہے کہ اس کی پیاس نہیں ہوا کرتی. اور یہ ایسی ایک لازمی حقیقت ہے, ایسی بے بدل, ایسی غیر مبدل حقیقت ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ دستور جاری ہے, کوئی اس کو بدل نہیں سکتا, کہ محبت کی پیاس تو بجھ جایا کرتی ہے وصل سے, لیکن نفرت کی پیاس انتقام کے باوجود نہیں بجھا کرتی, بھڑک جاتی ہے. کہتے ہیں اور بھی کچھ ہو, حل تراتے جب پوچھا جاتا ہے تو کہتی ہے حل میں نہیں, کہ اللہ میاں ابھی کہاں کچھ اور ڈال, ہماری آگ میں ذرا اور بھی بھڑکن پیدا ہو تو زیادہ لطف آئے. تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا, خدا کی تقدیر کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے جو اس سلسلے کو ختم کر سکے. اس لیے بار بار گیری اوزاری کے ساتھ خدا کی طرف جھکے اور جھکتے چلے جائیں, اور بے صبری نہ دکھائیں, کیونکہ بے صبری دعاؤں کو کاٹ لیا کرتی, اور بے صبری ہمیشہ کفر پر منتج ہو جایا کرتی. اور پھر ایسے بڑے بول انسان بولنے لگ جاتا ہے کہ ہم تو مٹ گئے سجدوں میں, ہم تو اتنا روئے, کہاں تھا وہ خدا, वो तो कहीं नहीं आया हमारी मदद। बेसब्री तो फिर वहीं पहुंचा देगी जहां शैले उस शैले को जो अंग्रेज पोएट था उसको बेसब्री ने पहुंचाया था। चंद घरों में जाके आवाजें दी कि खुदा है कि नहीं है, और गूंज पैदा होती गई और उससे सवा उसको कुछ हासिल ना हुआ। और थोड़ी देर के बाद ऐलान कर दिया, मैं तो सब घरों में फिर आया हूं, आवाजें दे आया हूं, खुदा को। तो मोमिन के लिए बेसब्री एक ज़हर कातिल का हुक्म रखती है। इसीलिए कुरान करीम में बे इंतहा सब्र पर जोर दिया है। सब्र के साथ दुआएं करते चले जाए और यह फैसला कर लें कि अगर हमें 1000 साल की भी जिंदगी मिले, और नाऊज़ बिल्ला अल्लाह ताला ने 1000 साल से लंबी आजमाइश हमारी मुकद्दर कर दी, तो हम अपने रब का दामन नहीं छोड़ेंगे और कोई कलमा कुफ्र उसके मुकाबले पर नहीं कहेंगे। हम बंदगी का हक अदा करते रहेंगे और याद करते रहेंगे, ऐ मालिक तू अपनी मालिकियत के हक जब चाहे अदा करे, हमारा कुछ नहीं। ये रूह आप पैदा करें, फिर देखें कि खुदा ताला किस तरह कायनात को आप मुखातिब कर।